राम 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 हरे 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 कृष्णा। हरे कृष्ण अठारह आठ हो गया। ओके हरे कृष्णा। श्री कृष्ण बलराम मंदिर इस्कान वृंदावन के भाग्यशाली भक्तों, भगवद्गीता यथारूप के भक्ति शास्त्री के 18वें अध्याय के अध्ययन में हम आज 18वें अध्याय के 9वें श्लोक से आगे बढ़ेंगे। और 9वां श्लोक है कार्यम इति एव यत् कर्म नियतम क्रियते अर्जुन संगम त्यक्त्वा फलम चैव सत्याग सात्विको मतः। तो सात्विक त्याग क्या है जो राजसिक है उससे बिल्कुल उल्टा है। राजसिक में क्या था? एक क्लेश था और क्या था?
और था क्लेश
काय क्लेश
भय पर भय
भय भय
भय
काय और भय था। ठीक है। और तामसिक में क्या था?
मोहवश
मोहवश। और उत्तम त्याग कौन सा था?
उत्तम त्याग देखो फल का था।
कर्तापन और फल का त्याग। कर्तापन के लिए कौन सा शब्द था? ये श्लोक था आपका हाँ, तो ये 6 वाला श्लोक है। इसमें कर्तापन के लिए कौन सा शब्द था? क्या था वो? कौन सा शब्द था? संगम संगम उसके था और फलन त्यागी था। तो यहाँ देखो वही दोनों शब्द हैं। इसमें 9 श्लोक में वही दोनों शब्द हैं, वही है ना। अब कार्यम इति एव यत कर्म, कर्म जो भी है वो अपना कार्य समझ के करता है। अब कौन सा कर्म करता है? नियतम क्रियते अर्जुन। नियतम का मतलब जो शास्त्र ने निर्धारित कर्म किए कहे हैं वो अपना कर्तव्य समझ के करता है। संगम त्यक्त्वा फलानि च, न तो कर्तापन का अहंकार है और न फल की इच्छा है। सत्याग सात्विक मतः, उसको सात्विक, जो उत्तम त्याग है वही सात्विक त्याग। ठीक है। तो ये सात्विक है। ठीक है। प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं? पहला शब्द जो लिखा है वो काय के लिए? नियत कर्म। नियत कर्म करने ही चाहिए, ये मानसिकता होनी चाहिए। और उसमें आसक्ति नहीं होनी चाहिए। किसके लिए? फल के लिए। और दूसरा क्या लिखा है? इसका इसका अर्थ क्या है? कर्तापन नहीं होना चाहिए, मैं करता हूं ये मानसिकता नहीं होनी चाहिए, ये इसका अर्थ है। तो जो कृष्ण अब प्रभुपाद जी उदाहरण दे रहे हैं एक कि कोई भक्त है किसी कारखाने में काम करता है, तो वो कारखाने में काम करने जाता है तो न तो उसको कारखाने में काम करने वालों से कोई संगति करनी है या उनसे संग करना है, न काम है उसमें कोई आ सकती है, तो फिर क्यों काम करता है? जो फल मिलेगा कृष्ण भावना के काम में लगाएगा। प्रभुपाद जी उदाहरण दे रहे हैं कि काम कहीं भी करने जाए, काम तो करने जाएगा तो वहां जो लोग रहते हैं उनमें भी आ सकती नहीं है, जो काम है उसमें भी आ सकती नहीं है, तो चाहिए क्या? बोला जो वहां से फल मिलेगा वो भगवान की सेवा में लगाएगा। तो ऐसा जो काम करता है इसको कृष्ण का कार्य कहते हैं, कर्म कृष्ण कर्म। जब वो फल कृष्ण को अर्पण किया जाए तो उसको समझना चाहिए कि उसका कार्य दिव्य है। हरे कृष्णा मुकुंद दत्त प्रभु वेलकम, व्हाट ब्लेसिंग यू ब्रॉट। हरे कृष्ण व्हाट इज दिस मधु, बहुत अच्छा। वर्स 10, न द्वेष्टे अकुशलम कर्मा कुशले नानुसज्जते त्यागी सत्व समाविष्टो मेधावीचिन संशय। न द्वेष्टे अकुशलम कर्म, ऐसा कार्य है जो कुशल नहीं है, मतलब अच्छा नहीं है, उससे तो द्वेष नहीं करता है। अब उदाहरण क्या दिया है, जैसे सर्दी में नहाना है, ये तो बहुत कठिन है, लेकिन उससे कोई ऐसे उससे द्वेष नहीं करता है। बोला अच्छा क्या है? दूसरा कुशले नानुसज्जते, जो अच्छा कार्य है उसमें कोई ज्यादा आसक्ति नहीं है। बोला क्या? बोला गर्मी में नहाना है तो सभी नहाना चाहते हैं। ऐसे उदाहरण दिया है बलदेव विद्याभूषण ने, कुशल का अकुशल का सर्दी में स्नान और कुशल का गर्मी में स्नान, ये उन्होंने उदाहरण दिया है। और वैसे भगवत गीता का उदाहरण देखें तो अर्जुन क्या काम कर रहा है? मारने का काम कर रहे हैं, काम तो अकुशल है पर उसमें कोई द्वेष नहीं है। और कहीं कोई अच्छा काम करना है उसमें कोई आसक्ति नहीं है, इन दोनों से ऊपर उठा हुआ है। पहली बार तो अच्छे और बुरे दोनों कामों में न बुरे काम से द्वेष है न अच्छे काम में आसक्ति है। त्यागी सत्व समाविष्टो, उसका सात्विक त्याग है, हा? वो सतोगुण में है, ये मेधावी त्यागी है, इसको बुद्धिमान त्यागी मानना चाहिए क्योंकि ये सत्व में स्थित है, और ये सत्व में स्थित है और ये मेधावी है, मेधावी है, मेधा कहते हैं बुद्धि को। सात्विक त्यागी के गुणों का वर्णन किया गया है इस श्लोक में। इस श्लोक में क्या है? सात्विक त्यागी के गुणों का वर्णन, कि वो अकुशल कार्य से द्वेष नहीं करता है, कुशल कार्य में आसक्त नहीं रहता, और उदाहरण वही दो दिए। क्यों ऐसे करता है? क्योंकि सत्व में स्थित है, सत्व में स्थित है तो सत्व में क्या होता है? बुद्धि निर्णायक होती है, सत्व गुण का प्रभाव बुद्धि के ऊपर होती है, होता है, और बुद्धि का काम है विवेक से निर्णय करना सही क्या है गलत क्या है। तो इसलिए क्योंकि वो बुद्धि के निर्णायक बुद्धि वाला सत्व में स्थित है इसलिए उसको मेधावी कहते हैं, वो मेधावी है। और उसका दूसरा एक श्लोक में क्या उसका गुण है देखो, छिन्न संशय है, इसका मतलब सारे संशय उसके समाप्त हो गए, अब उसके मन में कोई भी दुविधा नहीं है, कि ये ठीक है या वो ठीक है। उन्होंने जो रास्ता लिया है आत्म साक्षात्कार का, उसी को सब कुछ समझता है। तो छिन्न संशय, जो चीजें जैसे हैं उसको समझने वाले को सात्विक वृत्ति कहते हैं। ये सात्विक त्यागी है, तो ये सात्विक त्यागी के गुण। प्रभुपाद जी लिखते हैं, कृष्ण भावना में जो व्यक्ति है वो सात्विक गुण से सुशोभित है, ऐसे समझ लीजिए। वो किसी से द्वेष नहीं करता है, और जो शरीर को कष्ट देता है उसकी भी परवाह नहीं करता है। क्या लिखा है पढ़िए पहले लाइन।
कृष्ण भावना वाला व्यक्ति या सत्वगुणी व्यक्ति ना तो किसी व्यक्ति से घृणा करता है, ना अपने शरीर को कष्ट देने वाले किसी बात से,
ना अपने शरीर को कष्ट देने वाले
किसी बात से, और कोई कुछ बोल
दे, मतलब कोई कोई मतलब खराब वचन बोला उससे दुखी नहीं होता,
दुखी नहीं
पाओ उसको घृणा नहीं करता।
अच्छा, ये कुशल और अकुशल की परिभाषा लिखी है प्रभुपाद जी ने। कुशल का मतलब है कि कोई अकुशल बात करे, शरीर के लिए कुछ बुरा कहे, या उससे कोई प्रभावित नहीं होता, ये हुआ अकुशल। वो सही जगह पे काम करता है, सही समय पे काम करता है, और नहीं डरता है कि कार्य में कोई कठिनाई आएगी या मुश्किल आएगी। ये भी अकुशल की ही परिभाषा है। ऐसा व्यक्ति दिव्य स्थिति में समझना चाहिए, उसकी बुद्धि जो है संशय से ऊपर उठी है, कर्म के विषय में उसको कोई संशय नहीं है। तो इसमें श्री प्रभुपाद ने जो गुण लिखे हैं वो गुण में विशेष क्या लिखा है, शरीर को कष्ट के कारण अच्छे या बुरे कार्य को नहीं त्यागता है। प्रभुपाद ने लिखा है किसके विपरीत, रजोगुण के विपरीत। रजोगुण में क्या है, काया कलेश के कारण नहीं करता है काम, यहां काया कलेश की परवाह नहीं करता है, चाहे सुख हो या दुख हो, या कोई सामने वाला भला करे या बुरा करे, उससे प्रभावित नहीं होता है, अपने कर्म को ठीक तरह से करता है, कोई संशय नहीं है। ग्यारहवां, नहीं देवृता शक्यम त्यक्तुम कर्माणि अशेषतः, यस्तो कर्म फल त्यागी स त्यागीति अभिधीयते। नहीं देवृता शक्यम त्यक्तुम कर्माणि अशेषतः, सारे कर्म शरीरधारी त्याग कर ही नहीं सकता। अशेषत का मतलब पूरे के पूरे। कोई कहे कि मैं सारे कर्म त्याग दूंगा, ये संभव नहीं है। किसके लिए, जिसको शरीर है। भाई शरीर है तो खाएगा पिएगा सोएगा, तो कर्म तो करना ही पड़ेगा ना। तो शरीरधारी सब कर्मों का त्याग नहीं कर सकता, ये है पहली लाइन। दूसरी लाइन, यस्तु कर्म फल त्यागी, इसलिए जो कर्म फल का त्यागी है उसी को ही त्यागी कहना चाहिए। अब सिद्धांत क्या हुआ, जब तक हम जीते हैं तब तक कर्म का त्याग पूर्ण रूप से नहीं कर सकते, इसलिए कर्म के फल को त्यागने को ही त्यागी कहा जाएगा। अब पहले ये श्लोकों में कहा गया, 3-5 में देखो ये लिखा हुआ है, ये अच्छा है। कर्म को पूर्ण रूप से छोड़ने से कर्म का फल को छोड़ना चाहिए, ये अच्छी बात है, क्योंकि इससे क्या होगा, ज्ञान में स्थित होगा और कोई चिंता नहीं होगी। है कहता है 3-5 में क्या लिखा है, उसमें भी ये देहधारी कर्म सब नहीं छोड़ सकता, ऐसा है क्या कुछ। हाँ, क्या श्लोक क्या है, नहीं कश्चित क्षणम अपि जातु अकर्म कृत तिष्ठति, कभी भी कोई जिंदा है तो कर्म करना ही पड़ेगा, तो ये तो कह दिया है पहले ही। इसलिए तो तो कर्म से तो कोई छूट नहीं सकता है, कुछ न कुछ तो कर्म करना ही पड़ेगा, इसलिए अच्छा है कर्म के फल को त्याग दे। तो व्यक्ति जिसने कर्तापन का विचार छोड़ दिया है और फल की इच्छा त्याग दी है, उसको सारे कर्म अपनी जो शक्ति है उसके साथ करने चाहिए। क्यों? ज्ञान प्राप्त करने के लिए, क्योंकि ये प्रसंग जो है ये ज्ञान का है, ये भगवान का निर्णय है। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं भगवद गीता में ये कहा, क्या क्या लिखा है, कभी भी कोई कार्य नहीं छोड़ता है, ये है 3-5। ये जो लाइन है, ये जो पहली लाइन है प्रभुपाद ने लिखा है, ये 3-5 है ना, नहीं तो कश्चित अकार्य से जो श्लोक है 3-5 के। अब प्रभुपाद लिखते हैं इसलिए कर्म कृष्ण के लिए करना चाहिए, न के फल की इच्छा के भोग के लिए। सब कुछ भगवान को अर्पण कर जाना चाहिए, तभी तो उसको त्यागी कहा जाएगा, सन्यासी कहा जाएगा। अब प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, हमारे कृष्ण भावना अमृत संघ में बहुत से ऐसे सदस्य हैं, बहुत परिश्रम के साथ जाते हैं, अपने कार्यालय में काम करते हैं, किसी कारखाने में काम करते हैं या किसी अन्य स्थानों में काम करते हैं, परंतु जो धन उनको मिलता है वो संस्था की सेवा में लगाना। ऐसे उन्नत आत्माएं वास्तव में सन्यासी हैं, वास्तव में त्यागी हैं। प्रभुपाद ने लिखा है वो वास्तव में त्यागी है और वही सन्यास के स्तर का जीवन जी रहा है, ऐसे समझना चाहिए। तो इसलिए यहां सिखाया है कि अपने कर्म फल को कैसे त्यागना चाहिए और किसके लिए फल को त्यागना चाहिए। त्यागना चाहिए भगवान के लिए। कैसे त्यागना चाहिए? काम करके उसका फल भगवान को अर्पण करना चाहिए। प्रभुपाद ने सीधा उदाहरण दिया है कि हमारे भक्त भी ये कार्य करते हैं, जैसे आप जाएंगे अभी बुक डिस्ट्रीब्यूशन में पैसे तो आएगा, लेकिन भगवान का है तो ये कार्य करने कार्य तो कर रहे हैं लेकिन फल भगवान को दे रहे। 12वां श्लोक, ये पहला विभाग पूरा होगा। अनिष्टम इष्टम मिश्रम च त्रिविधा कर्मणः फलम् भवत्यत्यागिनां प्रेत्या नत सन्यासिनां क्वचित। प्रेत का अर्थ क्या है? प्रेत्य का अर्थ क्या है? देखो प्रेत्य को समझो, प्रेत्य किसको कहते हैं? मरने के बाद प्रेत बनने से प्रेत्य, प्रेत्य को समझना चाहिए प्रेत्य क्या है। हाँ, अनिष्टम इष्टम मिश्रम च। अनिष्टम का मतलब जो पसंद नहीं है, जैसे नरक में जाना। इष्टम का मतलब जो पसंद है, जैसे स्वर्ग में जाना। और मिश्रम का मतलब जहां दुख और सुख दोनों है। नरक में दुख है, स्वर्ग में सुख है, और धरती के ऊपर मानव बने तो दुख और सुख दोनों। तो ये है त्रिविध कर्मण फल। में तीन प्रकार के किसी भी कर्म के ये तीन फल है, या नरक में जाएगा, या स्वर्ग में जाए, या धरती पे आए। इसका अर्थ ये हुआ, अनिष्टम का मतलब नरक, इष्टम का मतलब स्वर्ग, और मिश्रम का मतलब धरती पृथ्वी। भवती अत्यागी नाम प्रेत्य, जो अत्यागी है इसका मतलब जिसने त्याग नहीं किया है, मरने के बाद उसको ये तीनों में से कोई एक तो भोगना ही पड़ेगा। अच्छा किया होता स्वर्ग में जाएगा, बुरा किया तो नरक में जाएगा। और अब आपसे पूछा जाए कि अच्छा करने वाला, पहले आप पढ़ के आए हैं कुछ अध्यायों में, तो कौन सा स्वर्ग में जाएगा, कौन सा नरक में जाएगा? ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्व इष्टा मध्य तिष्ठन्ति राजसा जगन गुण अधोगच्छन्ति तामसा। सतोगुण वाले ऊपर जाते हैं, रजोगुण वाले पृथ्वी पे, तमोगुण वाले नरक में जाते हैं, ऐसे समझ लीजिए। न तो सन्यासी नाम क्वचित, परंतु जिसने पूर्ण त्याग किया है वो, उसको ये तीनों फल भोगने नहीं पड़ेंगे। तो यहां क्या है, तुलना है। फल है तीन, किसके लिए? अत्यागी ली के लिए, कब? मरने के बाद। और जो त्यागी है उसके लिए नहीं है ये, क्योंकि वो तो ज्ञान है, मुक्त होगा, भगवान के पास जाएगा। ठीक है, ये श्लोक समझ में आया? ये श्लोक उस दोष को दिखाता है अगर कोई त्याग नहीं करता है। अगर जीवन में त्याग नहीं आएगा, वैराग नहीं आएगा, तो उसका दोष क्या है उसको ये श्लोक समझा रहा है। जो त्याग नहीं करेंगे, जैसे मैंने समझाया है, भगवान कहते हैं अत्यागी नाम है, मरने के बाद प्रेत तीन प्रकार का फल मिलेगा, अनिष्टम नरक में दुख भोगेंगे, इष्टम स्वर्ग में सुख भोगेंगे, अथवा धरती के ऊपर आएंगे, मिश्रम कर्म मानव जन्म में भोगेंगे। परंतु जो त्यागी है उसको ये नहीं भोगने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि वो मुक्त हो जाएगा ज्ञान से, क्योंकि उसके कर्म ही ज्ञान में परिपूर्ण हो जाएगा, उसका निष्काम कर्म ज्ञान में स्थित हो जाएगा और ज्ञान उसको मुक्त कर देगा। ये है वास्तविक त्याग का फल, ये है वास्तविक त्याग का फल। प्रभुपाद लिखते हैं कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ज्ञान के स्तर पे, कौन से ज्ञान के स्तर पे, भगवान श्री कृष्ण से हमारा क्या संबंध है, उस स्तर से कार्य करता है, इसलिए सदा ही मुक्त है। इसलिए उसको न तो दुख भोगना न सुख भोगना मरने के बाद कुछ भी उसके लिए नहीं है, इतना ही प्रभुपाद जी ने लिखा है। अब दूसरा विभाग शुरू होता है 13 से 18 श्लोक, जो 13 से 18 अध्याय जो है ज्ञान का विभाग जो है उसका सारांश, ये 13 से 18 श्लोक तक चलेगा। तो इसका अर्थ है अब जो श्लोक आ रहे हैं वो ज्ञान कर्म से जो ज्ञान प्राप्त होता है उसके विषय में। तो ज्ञान कैसा होगा, कर्म कैसे करें ज्ञान के स्तर पे, इसका अर्थ यह है कि समझदार व्यक्ति कर्म कैसे करता है अथवा कर्म को कैसे जानता है। पंचतानी महाबाहो कारणानि निबोधमे सांख्य हे कृतानि प्रोक्तानि सिद्ध्य सर्वकर्मणां। पंचायतानी का मतलब पांच, महाबाहु अर्जुन को संबोधन है, शक्तिशाली अर्जुन का कर्माणि निबोध में मैं आपको अब समझाता हूं। कारण है किसी भी कर्म के पांच, कोई भी कार्य कभी भी कोई कहीं भी करे उसके पांच कारण होते हैं। ये बात ज्ञान के स्तर पे सब याद करो, हर कार्य के कितने कारण है, पांच। बोला अब प्रभुपाद ये कहते हैं भगवान श्री कृष्ण, फिर देते हैं शास्त्र का प्रमाण। बोला कहां लिखे हैं, सांख्य कृताने प्रोक्तानि, सांख्या दर्शन जिसको ज्ञान कहते हैं, वेद कहते हैं, कृतानि प्रोक्तानि, सांख्य प्रोक्तानि का मतलब वेदांत में इसका वर्णन है, भगवान भी कह रहे हैं और फिर शास्त्र का प्रमाण भी दे रहे हैं। कोई बात कहे फिर गुरु बोल रहा है, शास्त्र का प्रमाण दे रहा है। बोला लाभ क्या होगा, सिद्ध्य सर्वकर्मणाम, इनसे सारे कर्मों की सिद्धि होती है। ये शास्त्रों का सार है, सिद्ध्य सर्वकर्मणाम का मतलब सारे कर्मों को सफल करने के लिए ये पांच कारण है। चक्रवर्ती पाद लिखते हैं बोला कर्म कैसे, हाँ कैसे कर्म करें कि उसका फल नहीं भोगना पड़े, ये प्रश्न उठाते हैं। कर्म करें और उसका फल न भोगना पड़े तो क्या करें, झूठा अहंकार त्याग कर। झूठा अहंकार त्याग कर मतलब कर्तापन को त्याग कर, कैसे कर्म करना चाहिए ये भगवान अब 5 श्लोकों में समझाएंगे। तो यहां से 5 श्लोकों में, श्लोक नंबर 13 से 13 14 15 16 17, इन श्लोकों में 18 तक जो भगवान समझाएंगे कि अहंकार रहित कर्तापन के भाव को त्याग कर कर्म कैसे किया जाए कि उसका बंधन न पड़े। अब कहते हैं सिद्धि के लिए, सारे कर्मों की सिद्धि के लिए पांच कारण है, ये मेरे वचन है, भगवान कहते हैं, मैं कहता हूं, ये मेरी बात है। कृष्ण कह रहे हैं हर कार्य के पांच कारण है। फिर कहते हैं सांख्य, सांख्य भी यही कहता है। सांख्य का एक अर्थ लिखा है ख्या का मतलब बोलना, सीधा बोलना, और सम्यक का मतलब परमात्मा के विषय में, एक अर्थ लिखा है परमात्मा के विषय में सीधा बोलना। बोला कौन बोलता है, तो सांख्य का दूसरा अर्थ लिखा है वेद, वैदिक साहित्य में लिखा है, उसको सांख्य कहते हैं। बोला उसका उद्देश्य क्या है, कृतांते, इसका मतलब कर्मों के बंधन को मिटाने के लिए है। अब बलदेव विद्याभूषण लिखते हैं जो कर्म करते हैं परंतु फल को त्यागते हैं, ये किसकी परिभाषा है, कर्म करते हैं फल को त्यागते हैं, किसकी कर परिभाषा है, त्यागी की। तो जो त्यागी है वो कर्म करते हुए फल को त्यागते हैं तो उनको कोई फल नहीं होता है, बंधन नहीं होता है संसार में, ये कहा गया है। ऐसे कैसे होता है, ऐसे क्यों होता है, इसलिए होता है, मुख्य बात क्या है इसमें, ऐसे क्यों होता है, असंग रहता है, असंग रहता है किस बात में, कर्तापन में, मैं करता ही नहीं हूं, मैं करता नहीं हूं, ये वहां हमने एक शब्द क्या पढ़ा था, निराहंकार होकर, और उसी बात को लिखता है कर्तापन से क्यों के रहते है, तो क्या हो गया, असंग है, तो इसलिए बंधन नहीं पड़ता, कर्तापन से मुक्त होने के कारण बंधन नहीं पड़ता। तो कौन करता है, मैं करता नहीं हूं, तो कौन करता है, तब कहते हैं इसको ये निश्चय है, इसको पूर्ण निश्चय है कि भगवान ही परम करता है, ये उसका दृढ़ निश्चय है कि भगवान ही पूर्ण करता है। पांच श्लोकों में इस सिद्धांत को समझाया जाएगा, नहीं जा रहा है आज ये नेट, मेरा अपना भी नहीं चल रहा है, आया नहीं आया अभी, नहीं मेरा अपना वो चल रहा था, वो भी चलते चलते बंद हो गया, वो मेरा अपना है वो भी है। हरे कृष्णा। तो पांच श्लोकों में इस सिद्धांत को समझाया जा रहा है, कौन सा सिद्धांत, कर्म करते हुए बंधन में नहीं पड़े, और उसके लिए क्या समझा रहे हैं, हर कर्म के पांच कारण है। निबोध का मतलब है मुझसे सुनो, इससे सिद्धि प्राप्त होगी, कर्म में बंधन से मुक्त हो जाएंगे हे महाबाहो। और भगवान इसके लिए प्रमाण क्या दे रहे हैं, सांख्य, इसका मतलब वैदिक साहित्य में इसका वर्णन है। तो इसका इसको कैसे समझाया जाए, ये है कृतांते, इसका मतलब ये है सारांश, ये है कंक्लूजन। वेद में क्या है, मुख्य बात क्या है, वेद में निर्णय क्या है, निर्णय एक है कि सारे कार्यों का प्रेरता, प्रेरता, प्रेरणा देने वाला परमात्मा है, सारे कार्यों की प्रेरणा देने वाला परमात्मा है। अच्छा जी, जिसको अंतर्यामी भी कहते हैं, ब्रह्म भी कहते हैं, बोले ये कहाँ कहा है? बोला भगवत गीता में कहा हुआ है। कहाँ कहा है? सर्वस्या हृदय सन्निविष्टो। हाँ, और दूसरों कहाँ का? ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। तो सब जगह कहा हुआ है। अब प्रभुपाद क्या लिया? हाँ जी, गलत काम, ओ असल में सब कामों का प्रेरणा देने वाला भगवान है, लेकिन कौन से आधार पे? अब ये दूसरा है, कौन से आधार पे? हमारे अपने पूर्व जन्म के संस्कारों के आधार पे। असल में हमारी इच्छा थी करेंगे ऐसे काम, लेकिन हमको भूल गया, भगवान सिर्फ याद दिलाएगा कि तुम्हें ये काला मुंह करना है। अब तो करो ना करो आपकी मर्जी है, ना करो तो बच जाओगे, करोगे तो फंस जाओगे, लेकिन प्रेरणा देने वाला भगवान है। नहीं चल रहा है अभी, चलो कोई बात नहीं, मेरा अपना फूल है। हरे कृष्ण, मेरा फूल है, क्यों नहीं चल रहा है? नहीं, मेरा अपना 2 GB इसमें है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। स्टार्टिंग 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 नहीं होगा। कौन सा है वो? जियो तो मेरा भी है।
रेडमी नोट 10 सेटिंग इसमें पासवर्ड है हरे कृष्ण। इसमें
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो भगवान ने कहा मेरा मत ये है, लेकिन ये शास्त्र का भी प्रमाण है। प्रभुपाद जी ने भी यही लिखा है। आगे प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं? अंत किसके वश में है सब कुछ? अंत तो गत्वा किसके वश में है? नहीं चल, परमात्मा के गत लिखा है प्रभुपाद। देखो परमात्मा के, और फिर 15-15 में इस बात का वर्णन है। देखो आपने लिखा है, लेकिन उसके बाद जो लाइन लिखी है वो सबसे, वो ये लाइन पढ़ो राखल, ये लाइन पढ़ो 15-15 जहां लिखा है उसके नीचे क्या लिखा है? सबको भगवान कार्य में निश्चित रूप से लगाता है, बिना निश्चित कार्य में लगाता है, जो विशेष कार्य है। कैसे? उसके लिखा क्या है? पूर्व कर्मों के आधार पर। ये देखो,
मिल गया उत्तर।
देखो लिखा है, लिखा है 15-15 के बाद ये लाइन पढ़ो, ये इसका उत्तर है आपके प्रश्न का।
प्रत्येक व्यक्ति को उसके पूर्व कर्मों का स्मरण कराकर किसी ना किसी कार्य में प्रवृत्त करते रहते।
तो भगवान हमारे को प्रवृत्त करते हैं हमारे अपने पूर्व कर्मों के आधार पे, जबरदस्ती नहीं, हमारे अपने कर्मों के संस्कारों को ही भगवान प्रेरणा देते हैं। और प्रभुपाद लिखते हैं इसलिए कृष्ण भावना भावित कृष्ण के ही निर्देश में कार्य करता है, इसलिए तो उसको कोई कर्म का फल भोगने की जरूरत ही नहीं है, न इस जन्म में न आने वाले जन्म में। अब 14वां जो श्लोक है ये याद करना चाहिए, सबको पता होना चाहिए। तो ये 5 कर्ता कौन से है? देखो, अधिष्ठानम तथा कर्ता, कर्णम च पृथक विधम, विविधाश्च पृथक चेष्टा, दैवं चैव अत्र पंचमम्। पांच कारण है, अत्र पंचमम, ये है पांच कारण। कौन से? पहला है अधिष्ठान। अधिष्ठान कहते हैं अधिष्ठान, जिसका अध्यक्ष है आत्मा। किसका अध्यक्ष है? अध्यक्ष है शरीर का। तो अधिष्ठान का अर्थ है शरीर, और कर्ता का अर्थ है जीवात्मा। ठीक है, दो तो हो गए। तीसरा है कर्ण, उसका मतलब है इंद्रियां। और जब इंद्रियां कहेंगे तो अंदर की इंद्रियां बाहर की दोनों गिननी पड़ेंगी। अंतःकरण मन भी समझना चाहिए। ठीक है, अब चौथा है, हाँ, पृथक विविधान हो गया। कर्णम च पृथक विविधान, पृथक विधान, विविधाश्च पृथक चेष्टा। चेष्टा है प्राणों की शक्ति के द्वारा कोई काम करते हैं ना, उसके लिए जो ऊर्जा चाहिए। काम नहीं, क्योंकि काम के तो ये पांच कारण है। एक बात ये समझो कि चेष्टा का अर्थ कर्म नहीं है। भाई कर्म के पांच कारण हैं, तो ये पांचों एक चौथा कारण है शक्ति, जिसके द्वारा कर्म किया जाए। तो शक्ति कहां से आती है? प्राण से। तो इसलिए प्राण है इसके लिए, नाना प्रकार के प्राण। और पांचवा है दैवा। देव का मतलब परमात्मा। तो ये पांच क्या है? जो शरीर का अधिष्ठा है, अधिष्ठान क्या है? शरीर, जिसका स्वामी है आत्मा। और कर्ता कौन है? जीव। श्रुति में लिखा है जीव कर्ता है, प्रभुपाद ने उसके लिए वही श्लोक दिया है। कौन सा श्लोक दिया है? एष ही दृष्टा सृष्टा। इसका अर्थ दो है। क्या अर्थ है दो इसके? ये सृष्टा भी है और दृष्टा भी है। सृष्टा है का मतलब दृष्टा है, देखने वाला है। सृष्टा का मतलब करता है, करता है, सृष्टि करता है ना अपने कर्मों की। सृष्टा और दृष्टा दोनों है।
मुझे ये पांच का परिभाषा मांगा है, परिभाषा।
हाँ, तो पांच क्या है? पहला शरीर है, अधिष्ठान शरीर है, और कर्ता जीव है। उसके लिए श्रुति ने लिखा है, उदाहरण दिया है प्रसन्न उपनिषद का, और वेदांत ने भी लिखा है ज्ञात्र एवा। जीव जो है वो ज्ञात जानता है। कर्ता शास्त्र अर्थत्व, और ये भी लिखा है ये ही कारण है, प्रकृति नहीं। भाई शास्त्र लिखे काय के लिए? शास्त्र में लिखा है ये काम करो ये नहीं करो, किसके लिए लिखे? जीव के लिखे है ना, प्रकृति के लिए तो नहीं लिखे। तो जीव करता है ना, तो ये जीव करता है, इसके लिए आपको परिभाषा देनी होगी। तो इनमें से कम ये तीन में से एक दो याद करना चाहिए, कारण लिखने के लिए कि जीव क्यों करता है। क्योंकि श्रुति में लिखा है, प्रसन्न उपनिषद में लिखा है, वेदांत सूत्र में लिखा है। ठीक है, तो शास्त्र किसके लिए है? मानव के लिए है। कैसे काम करना है इसके? मानव को दिया गया है। अगर जीव ही कारण नहीं है इसका, तो क्या शास्त्र किसके लिए? प्रकृति के लिए नहीं। आगे लिखते हैं, कर्णम का अर्थ है हमारे कान नाक आदि सारी इंद्रियां और मन, क्योंकि वो भी अंतःकरण है, मन भी उसमें आएगा। और उसके अलग अलग कार्य हैं, कार्य करने के लिए सबकी जरूरत पड़ती है। और पृथक चेष्टा का अर्थ है हमारे प्राणों की ऊर्जा। चेष्टा का अर्थ कर्म नहीं हो सकता, क्योंकि कर्म के तो पांच ये कारण है, ये दोबारा याद करना। देवम का अर्थ है परम ब्रह्म, परमात्मा, जो भी समझो, जो सबके लिए पूजनीय है। ये पांचवा जो है देव, वो सारे कार्यों को संपूर्ण करने में मुख्य कारण है। इसका अर्थ है भगवान हरि अंतर्यामी मुख्य कारण है। मुख्य कारण कौन है? भगवान हरि अंतर्यामी। और जो इस बात के विषय में पूर्ण रूप से कन्विंस्ड हैं,
परमात्मा सबसे इन सबसे निर्णायक है।
हाँ,
पांचों में से। अच्छा, और लिखा है क्यों
परमात्मा सबसे?
मतलब ये जो पांच है
हाँ, इनमें परमात्मा सबसे ज्यादा निर्णायक है लिखा है ना इधर, ठीक है। क्यों इसलिए के क्यों इसलिए कि किसने शरीर दिया, इंद्रियां किसने दी, प्राण किसने दिया, लिखा है जो ये बात को ठीक तरह समझते हैं कि शरीर इंद्रियां प्राण और जीव ये सहायक है, कारण है, ये कैसे कारण है, ये सहायक कारण है, असिस्टेंट काज है, और भगवान इसका इनिशिएटर है, इनिशिएटर का मतलब प्रेरता है, भगवान प्रेरता है, ये सहायक है, ये सहायक है, भगवान प्रेरता है, जो फल की इच्छा को त्याग देते हैं और अपने आप को कर्ता नहीं मानते हैं वो बंधन में नहीं पड़ते, क्योंकि वो कहते परमात्मा ही करता है, लेकिन अगर वो कहेंगे हम सहायक हैं, हम कर रहे हैं, भगवान को मानेंगे नहीं तो बंधन में पड़ेंगे। तो इसलिए भाई शरीर किसने दिया, परमात्मा ने, इंद्रियां किसने दिया, ये सहायक हैं लेकिन मुख्य परमात्मा है। अब पहुपा जी का तात्पर्य हम तक पहुंचे, अगर जीव के कार्य भगवान के ऊपर ही निर्भर है, कोई कहे जैसे हम आप पूछ रहे थे सब कुछ भगवान के ऊपर निर्भर है और भगवान के ही, जैसे भगवान काम में लगाएगा ऐसे ही लगते हैं और भगवान के ही लक्ष्य को पूरा करते हैं, तो फिर तो जीव तो कठपुतली हो गया भाई। जैसे कठपुतली को जैसे नचाने वाला है ऐसे नचा, तो जीव कठपुतली तो नहीं है, उसको स्वतंत्रता तो है। तब लिखते हैं तो शास्त्र में कहा गया है क्या करो क्या नहीं करो, ये तो जीव के लिए है, फिर तो इसका जरूरत क्या जीव के लिए, क्या जरूरत है शास्त्र में लिखने का कि ये करो ये नहीं करो, अगर जीव कठपुतली है तो बेचारा क्या करेगा। तो शास्त्र ने उसको मारा, इसलिए कोई अपनी बुद्धि से कार्य को शुरू ही नहीं कर सकेगा फिर तो भगवान की इच्छा से सब कार्य करेगा, ऐसी बात नहीं है। अब कहते ये एक सिद्धांत दे रहे हैं बलदेव विद्याभूषण, क्या सिद्धांत, क्या पढ़ा हमने, क्या सिद्धांत अभी पढ़ा, अगर कठपुतली जीव है तो फिर शास्त्र में क्यों लिखा है कि ये करो ये नहीं करो, सब कुछ भगवान ही तो करा रहा है, फिर इसकी जरूरत क्या है, विधि निषेध की जरूरत क्या है, और बुद्धि से कुछ कर ही नहीं सकता है जीव, तो बुद्धि क्यों दी उसको। तब कहते हैं जीव जो है कि शरीर का इंद्रियों का प्राण का जिनको भगवान ने दिया है उसको लेने वाला तो जीव है ना, जीव ने कर्म किए तब ये मिला ना, तो वो जो शरीर मिला, जो इंद्रियां मिले और जो उसको प्राण मिले, वो जीव को मिले उसके अपने कर्मों के कारण, वो इसका सबस्ट्रेटम है। दिया किसने, भगवान ने दिया, ये शक्ति किसने दी, भगवान ने दी, क्योंकि भगवान ने ये सब दिया है और उसने ये सब ग्रहण किया है, इसलिए जीव इस शरीर के ऊपर, इंद्रियों के ऊपर, अपनी इच्छाओं के ऊपर स्वामी है, इसलिए वो अपने कर्म का कारण है, ऐसा नहीं है नहीं है कारण। और भगवान जो सब जीवों के हृदय में बैठे हैं वो उसको अनुमति देते हैं, अनुमति देते हैं कि जीव ये कार्य करो, और फिर उसको प्रेरणा देते हैं। अब हमको याद आ जाएगा परमात्मा का काम क्या है, उपदृष्टा अनुमंता भर्ता भोक्ता महेश्वर। तो अब वो आप कर्ता वाली पुरानी बात को याद कीजिए जो हमने पहले पांचवें अध्याय में तीसरे अध्याय में पढ़ा था, कर्ता कौन है, इच्छा कर्ता जीव है, अनुमति देने वाले भगवान है और प्रकृति उपकरण देती है, तो इसका मतलब जीव इच्छा करता है और भगवान इच्छा पूरी करते हैं, अनुमति देते हैं, प्रेरणा देते हैं वो, ये इसलिए ऐसा नहीं कह सकते केवल भगवान ही कारण है, परंतु मुख्य कारण भगवान इसलिए है कि उसके कर्मों का फल भी तो भगवान ने दिया ना, भाई कर्मों के फल के कारण उसको जो शरीर मिला, जो इंद्रियां मिले, प्राण मिले, ये भी तो भगवान ने दिया ना, वो शक्ति भी तो भगवान ने दी, तो वो उसकी इच्छा के अनुसार दी, इसलिए भगवान आदि कारण जरूर है। जीव अपनी बुद्धि के द्वारा चाहे तो कार्य करे चाहे तो नहीं करे, भगवान किसी भी प्रकार से उसको जबरदस्ती बाध्य नहीं करते हैं कि ये कार्य करो। भगवान जीव की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं करते हैं कि ये कार्य करो, करो या न करो ये आपकी इच्छा है। ये वेदांत सूत्र में भी लिखा है, परातत शक्ति है, हमारी शक्ति भगवान से आती है लेकिन करते हम अपनी अपनी इच्छा से। तो कोई कहे कि मुक्त जीव जो है उसकी तो इंद्रियां ही नहीं होती हैं, शरीर नहीं होता है, वो मुक्त है, तो क्या मुक्त जीव जो है वो करता नहीं है क्या? बोलो नहीं, क्यों नहीं है करता? उसकी अपनी आध्यात्मिक इंद्रियां होती हैं, आध्यात्मिक मन होता है, उसके द्वारा अपनी इच्छाएं पूरी करता है। तो ऐसा नहीं है कि मुक्त जीव भी करता नहीं है, कर सकता है। अब प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं, ये इससे अपने को तो इससे सारांश निकालना, ये तो हम एक एक भूमिका बना रहे हैं प्रभुपाद के तात्पर्य को समझने की। अधिष्ठान का अर्थ है शरीर, ये तो समझ को समझ में आ गया। और प्रभुपाद लिखते हैं आत्मा जो शरीर में है, जो कर्मों का फल है, उसका कारण है, इसलिए वो भी करता है, अपने कर्मों का फल भोगता है इसलिए वो करता है। तो अब वो क्या है आत्मा, क्या है, क्या लिखा है, ज्ञाता है और करता है, और इसके लिए श्लोक दिखा है वही सृष्टा और दृष्टा वाला, और फिर वेदांत सूत्र वाला भी वो करता, सब दोनों लिखे, ठीक है। काम करने के लिए जो करण है, करण का मतलब औजार, वो है इंद्रियां, ये भी समझ में आ गया। और फिर प्रयास, प्रयास हर कार्य के लिए कुछ प्रयास चाहिए, परंतु सारे कार्यों का अंतिम आधार है परमात्मा की इच्छा, जो सबके हृदय में सुहृद के रूप में बैठे हुए हैं, उसकी इच्छा के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता। परम भगवान परम कारण है, इस ऐसी परिस्थितियों में जो कृष्ण भावना में कार्य भगवान परमात्मा के रूप में उसके निर्देश में कार्य करता है, जो सबके हृदय में बैठा है, तो कभी बंधन में नहीं पड़ेगा। और जो कार्य जो कृष्ण भावना को पूर्ण करते हैं, वो अंत में किसी कार्य के लिए बाध्य नहीं होते, जवाबदार नहीं होते, सब भगवान की इच्छा के ऊपर है, परमात्मा के परम पुरुष भगवान की इच्छा के ऊपर है। अब इस प्रभुपाद के तात्पर्य से आपके इस प्रश्न का उत्तर क्या है, प्रभुपाद जी के तात्पर्य के आधार पे प्रश्न क्या है इसका?
कर्म के पांच कारणों की सूची बनाइए,
बच्चों बना दी, नाम लिखो। अधिष्ठान कहते हैं शरीर को, जीव को कर्ता कहते हैं, कर्ण कहते हैं इंद्रियों को, चेष्टा कहते हैं प्राण को या प्रयास को,
उनकी परिभाषा लिखिए,
परिभाषा लिखिए, तो ये काम इनके द्वारा होता है वो लिखिए, नाम लिख के उसकी परिभाषा करेंगे, ठीक है। और
इनमें से कौन सा सबसे निर्णायक है और क्यों?
सबसे निर्णायक है परमात्मा। अब वो क्यों है? क्योंकि उनकी इच्छा के बगैर कुछ नहीं होता है, उसी की अनुमति से सब कुछ होता है, वही प्रेरता है, वही प्रेरता है, वही अनुमंता है, और इसलिए कृष्ण भावना में भगवान के निर्देश से जो कार्य करेगा, और भगवान का निर्देश भक्त के लिए गुरु के माध्यम से होता है, तो कर्म के बंधन में नहीं पड़ेगा। ये आप अपना उसमें समझ से लिख सकते हैं कि भगवान कैसे हमको बताएगा मेरे लिए कार्य करो, गुरु के माध्यम से। तो जो गुरु के माध्यम से भगवान के कार्य में लगा है, वो कार्य कर्म के फल में बंधन में नहीं पड़ेगा।
गुरु और शास्त्र की जरूरत
हाँ गुरु शास्त्र साधु सब आएगा। अब ये थोड़ा सा अच्छा ये तो ठीक है, पंद्रवा तो मुश्किल नहीं है। शरीरवान मनोभिर्यात् कर्म प्रारभ्यते नरः न्यायं वा विपरीतान् वा पंचयति तस्य हेतवः। अब ये प्रश्न उठता है कि काम के पांच कारण है, लेकिन काम होता किससे है? किसी भी काम के पांच कारण है ये तो हम समझ गए, काम होता किससे है? तो तीन बातें लिखी है, किससे होता है? शरीरवान मनोभी, शरीर से कार्य होता है, वाणी से होता है और मन से होता है। तो कोई भी कार्य है, चाहे वो शरीर से हो या मन से हो या वाणी के हो, इन सब के कर्म प्रारभ्यते नर, कोई भी काम करेगा किसी से भी करे, न्यायम वा विपरीतम वा, इसका मतलब शास्त्र में बताया हो या उसके विपरीत हो। क्या लिखा है न्यायम का क्या अर्थ लिखा है? धार्मिक हो या अधार्मिक हो, न्यायपूर्व का मतलब धार्मिक, अन्याय का मतलब अधार्मिक हो, उनके ये पांच ही कारण है। अब देखो इसमें ये आ गया आपका फिर वापस, अधर्मी है तो उसके भी पांच ही कारण है, तो पांचवा कारण अधर्मी में भी आ गया। भाई अधर्म अगर भगवान में नहीं है तो कहां से आएगा? भगवान में कहां होता है अधर्म? कहां होता है भगवान में? पीठ में होता है। माया कहां होती है? पीठ में होती है। इसका मतलब जो भगवान का पीठ देगा वो अधर्म करेगा। और सुख और दुख के लिए क्या चेतन महाप्रभु ने कहा है, भगवान के सन्मुख सुख है, भगवान को पीठ दोगे तो दुख है, भगवान को भूलने से ही तो दुख है। तो दुख का कारण भी भगवान है क्या? भूलना। सुख का कारण ही भगवान है क्या? याद करना। दोनों का कारण तो भगवान ही है। तो अब प्रभुपाद जी लिखते हैं सही काम करो या गलत करो, लिखा क्या है? सही करो या गलत करो, ये महत्वपूर्ण शब्द है। नियतम विपरीतानि जो है ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। सही कार्य कौन है? जो शास्त्र ने बताया है, इसका मतलब शास्त्र के अनुमत कार्य सही है और उसके विपरीत कार्य गलत है। परंतु कुछ भी करना हो पांच उसके ये कारण है। तत्रैवं सति कर्तारं आत्मानं केवलतं तु यः पश्यति अकर्तबुद्धित्वान् न स पश्यति दुर्मतिः। ये श्लोक कहता है जो पांच नहीं मानता है और अपने आप को ही मानता है कि मैं करता हूं, वो दुर्मति है, उसकी मति ठीक नहीं है, वो बुद्धिमान नहीं है। जो पांच कारणों को नहीं मानता है, अकेला अपने आप को मानता है, तत्रैवं सति कर्तारं, इनमें से जो अपने आत्मानम अपने आप को केवल मैं ही कारण हूं ऐसे मानता है, पश्यति अकृत बुद्धित्वान, क्योंकि उसको ज्ञान नहीं मिला है, अज्ञानी है, अपने आप को देखता है, पश्यति आत्मानम केवलम करता सन पश्यति, वो देखता नहीं है। ये इसका मतलब जिसकी ज्ञान चक्षु नहीं है वो अपने आप को कर्ता मानता है, इसका मतलब ये हुआ। जिसको ज्ञान चक्षु नहीं है, इसका मतलब जो पांच कारणों को नहीं जानता है और नहीं मानता है, अपने आप को कर्ता मानता है, वो दुर्मति है, वो अज्ञानी है और उसके पास ज्ञान चक्षु नहीं है, इसका अर्थ तो ये हुआ ना। सरल अर्थ ये हुई है इस श्लोक का हुआ ना, पांच कारणों को जो नहीं जानता है और नहीं मानता है, अपने आप को ही केवल कारण मानता है, वो अज्ञानी है, ज्ञान चक्षु नहीं है, दुर्मति है। लिखते हैं ऐसे हैं कि जीव भले करता है, करता है भगवान की अनुमति से और करता है शरीर के माध्यम से और इंद्रियों के माध्यम से और प्राण के माध्यम से, इसका मतलब तीन बातें वही हो गई, भगवान की अनुमति, जीव की इच्छा और प्रकृति के द्वारा दिया गया शरीर इंद्रियां प्राण वो मशीन की तरह कर्ण उसको उपकरण मिले, इससे जो कार्य तो सबसे हो रहा है परंतु समझता है मैं ही करता हूं, वो दुर्मति है, वो मूर्ख है, वो मूर्ख है और अज्ञानी है। कैसा है बोला अंधे के समान है, वो अंधा है, अंधा का मतलब अज्ञानी है। प्रभुपाद जी ने क्या लिखा है, मूर्ख व्यक्ति परमात्मा हमारे हृदय में सुहृद के रूप में बैठे हैं उसको नहीं जानता है, नहीं समझता है, वो ही सारे कार्य कर रहा है ये नहीं मानता है, वो मूर्ख है। पहला प्रभुपाद सीधा क्या लिखते हैं, सुहृद परमात्मा हृदय में जो बैठा है वो ही सारे कार्यों का प्रेरिता है, जो ये नहीं मानता है वो मूर्ख है। भले भौतिक कारण है, क्या जगह, जैसे से जगह क्या है यहां लिखा है शरीर, देखो इस प्रभुपाद के तात्पर्य में देखो, भले भौतिक कारण, कौन से भौतिक कारण, हाँ पहला शब्द क्या लिखा है स्थान, स्थान स्थान का क्या अर्थ हुआ शरीर, फिर क्या लिखा है कर्ता जीव, उसके बाद क्या लिखा है चेष्टा, उसके बाद क्या लिखा है करण, परंतु इन चारों के बाद आदि कारण तो अंतिम कारण तो परमात्मा है, परम पुरुष भगवान है। इसलिए चार भौतिक कारण नहीं है परंतु परम क्या लिखा है, परंतु परम सक्षम कारण भी है। इन चारों को भौतिक क्यों लिखा है, पर जीव को भौतिक क्यों लिखा है, नहीं देखो चारों के सामने भौतिक लिखा है, जीव तो भौतिक नहीं है ना, चार भौतिक कारण है एक आध्यात्मिक कारण है। ये भौतिक जीव को इसलिए लिखा है कि वो अभी अपने आप को शरीर मान रहा है, वो अपने आप को बद्ध जीव शरीर मान रहा है, इसलिए उसको भौतिक कारण लिखा है। तो अब ये प्रभुपाद जी ने यहां वही शब्द लिखे हैं, देखो ये स्थान को स्थान नहीं समझना, शरीर समझना, तो तात्पर्य में स्थान का मतलब है शरीर, जगह नहीं शरीर। जो भगवान को नहीं देखता है कि भगवान प्रेरता है, वो वास्तव में और मैं ही करता हूं ऐसे जो देखता है, करता है हम मन्यते, विमूढ़ करता है हम मन्यते, वही बात हो जाएगी। अब ये है सबसे 17वां श्लोक, यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर् यस्य न लिप्यते हत्वापि सैमा लोकान् नहंति न निबध्यन्ति। ये तो श्लोक सीधा अर्जुन के लिए है। हंति का मतलब है इस युद्ध में मारने वाला, चाहे भीष्म हो चाहे को द्रोण हो, उनको मारने वाला भी मारने वाला नहीं कहेगा, कहा जाएगा कब, इसका मतलब कर्ता जीव कर्म करके भी बंधन में नहीं पड़ेगा कब। यस्य न अहंकृतो भावो, पहले क्या होना चाहिए, न अहंकृतो भावो का मतलब झूठा अहंकार कर्तापन का नहीं होना चाहिए। दूसरा बुद्धि यस्य न लिप्यते, और जिसकी बुद्धि कार्य में लेपायमान नहीं होती है, हत्वा स हिमा लोकान, जो इस संसार में किसी को भी मारे न अंति स निबध्यते, और न उसको मारने वाला माना जाएगा न बंधन में पड़ेगा। तो मुख्य बात इसमें क्या है, न अहंकृतो भावो बुद्धि यस्य न लिप्यते, बुद्धि यस्य न लिप्यते का अर्थ क्या है, इसका मतलब ये अच्छा है बुरा है कार्य उसमें उसको कोई आसक्ति नहीं है, आसक्ति रहित और कर्तापन रहित कार्य, आसक्ति रहित अच्छा है बुरा है इससे कुछ नहीं लेना है। बलदेव विद्याभूषण कहते हैं तो बुद्धिमान व्यक्ति को कैसे देखना चाहिए, कार्य कैसे करना चाहिए, भाव का मतलब जिसको सोचने की भगवान ने शक्ति दी है, वो ये जान सकता है कि कार्य भगवान के ऊपर निर्भर है, तब वो कहेगा, कभी अहंकार नहीं करेगा कि मैं करता हूं। और उसकी बुद्धि इच्छाओं से दूषित नहीं है, किसकी, फल के भोगने की, न लिप्यते, फल के भोगने की इच्छाओं से दूषित नहीं है, न लिप्यते का मतलब बुद्धि इतनी है कि मैं फल की इच्छा, फल के कर्म के फल के भोगने की इच्छा नहीं है। वही दो बातें फिर घूम फिर के वही ऐसे आ गई, कौन सी, कर्तापन और भोगतापन को, फल के भोगता, फल को ही भूल जाए, दो शब्द याद रखे, कर्ता और भोगतापन को त्याग दे। कर्ता कौन है भगवान, भोगता कौन है भगवान, ये जो मान ले, मैं कर्ता नहीं हूं, मैं भोगता नहीं हूं, तो फिर कोई बंधन नहीं है। साफ शब्दों में लिखना है तो दो शब्द गए, कर्ता और भोगतापन से मुक्त। हरे कृष्ण, आगे क्या लिखा है, फिर लिखा है, वो चाहे भीष्म को मारे या किसी और को मारे, वो मारने वाला नहीं कहेगा, उसको उसको हत्या का दोष नहीं लगे। प्रभुपाद इसका उदाहरण देंगे, इस श्लोक में अर्जुन को देखो, प्रभुपाद ये अर्जुन को ये सूचना दी जा रही है कि आप जो नहीं लड़ने का कह रहे थे ना, ये अहंकार से कह रहे थे, ये अहंकार के कारण कह रहे थे। अर्जुन अपने आप को कर्ता मान रहा था कि भगवान परम अनुमंता है, ये नहीं मानता रहा, समझ रहा था। अगर कोई ये नहीं सकता समझता है कि भगवान परम अनुमंता है, तो फिर वो कैसे कार्य करेगा। अगर अपने आप को ही कार्य का कर्ता मानेगा या यंत्र मानेगा, मैं यंत्र हूं और भगवान अनुमंता है, ऐसे कोई मानेगा तो सही है। ये लिखा है क्या, मैं यंत्र हूं भगवान अनुमंता है, भगवान परम अनुमंता है और मैं यंत्र हूं, ऐसा व्यक्ति कभी भी भ्रम में नहीं पड़ेगा। और ऐसे व्यक्ति के कार्यों का जो दायित्व है वो झूठे अहंकार से उत्पन्न नहीं होता है और भगवत रहित नहीं है, भगवत भगवत विज्ञान रहित नहीं है, अथवा ऐसे कहा जाए कृष्ण भावना भावित वंचित नहीं है। अब ये तीन शब्द लिखे हैं, अहंकार रहित, ईश्वर वहिन और कृष्ण भावना विहीन, तीन चीजें हैं। वो कभी भी इन तीन गलतियां नहीं करेगा, ईश्वर को याद करेगा, कृष्ण भावना में रहेगा और अहंकार रहित रहेगा, भ्रम में नहीं पड़ेगा। चार चीजें किसको प्राप्त होंगी, जो अपने आप को यंत्र मानेगा और भगवान को परम परम अनुमंता, यहां है परम अनुमंता। तो दोष ये लाइन आप अंडरलाइन कर लो, ये एक मुख्य जो तात्पर्य में ये, परंतु जो भी कर्म का अपने आप को यंत्र और भगवान को परम अनुमंता मानता है, उसके सारे कार्य सिद्ध होंगे। ऐसे लिखा है कि नहीं, मिला ये लाइन मिले आपको,
जो व्यक्ति कर्म के उपकरणों को कर्ता के रूप में अपने को परम निर्देशक के रूप में परमेश्वर को मानता है, वो प्रत्येक कार्य को पूर्ण करने में सक्षम है।
तो इसमें दो शब्द जो है मुख्य याद रखने हैं, कौन से, मैं क्या हूं यंत्र और भगवान परम अनुमंता। यंत्र रूढ़ानी माया, ये श्लोक 18 अध्याय में आगे आएगा, ये यंत्र शब्द आएगा। अच्छा, 11वें में कोई ऐसा आपने अध्याय में एक श्लोक पढ़ा है जिसमें यंत्र हो को कर्ता और भगवान उसका परम अनुमंता हो, ऐसा श्लोक है क्या 11वें अध्याय में भगवान ने कुछ कहा है क्या 11वें में? निमित्त मात्र भव सवय साचर, निमित्त मात्र, तुम केवल निमित्त मात्र बनो, काम मैंने सब कर दिया है, निमित्त मात्र भव सवय साचन। हे वीर अर्जुन, तुम केवल निमित्त मात्र बनो, कार्य सब मैंने पहले ही कर दिया है, ये इसका अर्थ है अर्जुन के, ये क्योंकि श्लोक अर्जुन के विषय में है ना, तो इस श्लोक को एक तो यहां से लगाना, कहां से मिलाना पड़ो, इसको मिलाओ कहां से, निमित्त मात्र भव अर्जुन, और दूसरा इसको मिलाओ 18वें इसी अध्याय के आगे एक श्लोक आएगा, यंत्र रूढ़ानी माया, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति ब्राह्मयं सर्वभूतानां यंत्र रूढ़ानी माया। तो ये जो श्लोक है ये इसकी परिभाषा है। वैसे तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन भगवत गीता के अंदर देखेंगे दो जगह इस, ये लाइनों के साथ दो ये चीजें मिलेंगी। आ रहा है कुछ समझ में? क्या मुख्य बात समझे अभी? यहाँ कौन कर्म के बंधन में नहीं पड़ेगा? मैं यंत्र हूं, भगवान परम परम अनुमंता है, और मैं कार्य करूंगा भगवान की अनुमति से। और प्रभुपाद जी आगे उदाहरण देंगे, मेरे ख्याल यही इसी में देंगे। हाँ, सिपाही वाला उदाहरण ध्यान दिया होगा, है ना, बस सिपाही वाला उदाहरण पड़ा है। तो जो कृष्ण भावना में कार्य करता है, भगवान के निर्देश से कार्य करता है, वो किसी को मारता है तब भी मारने का उसको हत्या का दोष नहीं लगेगा, और वो कभी भी कार्य उसको बंधन में नहीं पड़ेगा। जैसे कि कोई सैनिक अपने सेनापति के आदेश से किसी को मारता है तो मारने का उसको दोष नहीं लगता, परंतु वही सैनिक अगर अपनी इच्छा से किसी को मारेगा तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी। तो उदाहरण क्या दिया? अब ये उदाहरण के साथ इसको समझें, ये उदाहरण के साथ समझें। और उस पांचों कारणों में परमात्मा को सेनापति कह के और जीव को उसका यंत्र कहो और भगवान अनुमंता है, तो फिर बंधन कोई नहीं है। ये क्या पूरे इन सब श्लोकों को मिला के फिर उत्तर लिखोगे तो और स्पष्ट समझ में आएगा, सिर्फ उसी एक श्लोक से समझ में नहीं आएगा। अब ये है सबसे मुश्किल श्लोक, इसको शुरू करते हैं, लेकिन इसकी कथा कल करेंगे। ज्ञानम गेयम परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चौदना कर्णम कर्म कर्म करतेति त्रिविधा कर्म संग्रह। पहले ज्ञान, दूसरा किसको जानना चाहिए, और तीसरा जानने वाला। ज्ञान का मतलब तो ज्ञान हो गया भाई, कोई चीज क्या है, और गेय का मतलब किसको जानना है, और परिज्ञाता का मतलब जानने वाला भाई, परिज्ञाता का मतलब। ये तीन जो है, चोदना का मतलब है नेम, शास्त्र का नेम है। चोदना शब्द के लिए क्या शब्द लिखा है, नेम लिखा है, प्रेरणा क्या लिखा है, वैसे एक शब्द शास्त्र में इस जो चोदना शब्द के लिए लिखा है नेम, रूल, रूल जो नेम है, कर्म का नेम। कर्म का नेम क्या है? तीन चीजें हैं कर्म के लिए। कर्म का नेम क्या है? तीन चीजें हैं कर्म के विषय में, ज्ञान किसके लिए कर्म कर रहे हैं उसकी जानकारी, और कौन कर्म कर रहा है। ज्ञान परिज्ञाता गेय। अब लिखा है कर्णम, कर्णम का अर्थ सबको आता है ना, कर्णम का अर्थ क्या है, इंद्रियां, और कर्म जो कार्य है, और कर्ता इति करने वाला, कर्ता इति का अर्थ करने वाला, ऐसे ही है ना, तीन हो गया ना, इंद्रियां, करने वाला और तीसरा क्या है कर्म स्वयं, इसको कैसे समझेंगे? मैं करने वाला, काम क्या पढ़ाना, इंद्री कौन सी वाणी, तो कर्ण बोलने वाला, मैं बोलने वाला, काम क्या कर रहा हूं बोलने का, किससे कर रहा हूं इंद्री से, तीन ये। और इसके लिए मेरे को जानना चाहिए कि मुझे क्या कहना है, कहना है वो मुझे पता होना चाहिए, विज्ञान क्या है पता होना चाहिए, किसको समझा रहा हूं भाई, स्टूडेंट की लेवल पे बात करनी है, कौन समझा रहा हूं ज्ञान किसको मैं हूं, ये मतलब तीन कारण है, तीन नेम है और तीन कारण है। त्रिविध कर्म संग्रह, त्रिविध सम त्रिविधा, ये किसी भी कार्य के ये तीन जो है क्या है, कर्म संग्रह। संग्रह का अर्थ क्या है, कर्म संग्रह का मतलब किसी कार्य को कार्य काम काम करने के ये तीन कारण है। ज्ञान, ज्ञान का विषय और ज्ञाता, ये तीन है प्रेरित का, प्रभुपाद ने जो लिखा है ना प्रेरता, कर्म के प्रेरता, क्या लिखा है कर्म के प्रेरता लिखा है ना, देखो प्रेरणा देने वाला मतलब प्रेरता, ये लिया है बलदेव विद्याभूषण का अर्थ, बलदेव विद्याभूषण लिखा है ये है तीनों कर्म के प्रेरता। और चक्रता चक्रवर्ती पाद लिखते हैं ये है कर्म के नेम। अब आगे लिखा है इंद्रियां, कार्य और कर्ता, ये तीनों कर्म के संग्रह के लिए क्या शब्द है, संगठित हैं, कॉन्स्टिट्यूट, कॉन्स्टिट्यूट का मतलब क्या है, संगठित कर, हाँ ठीक है, अब क्या है इसके बाद थोड़ा सा ये इसका तात्पर्य थोड़ा टेढ़ा है इसलिए आज नहीं बोलते, टाइम हो गया है। ये श्लोक इस सेक्शन में ये श्लोक थोड़ा सा मुश्किल है। तो आज हमने क्या पढ़ा अभी तक, एक तो वो सात्विक त्याग पढ़ा, सात्विक त्याग नहीं करने वाला, तीन प्रकार के फल पड़े उसको मिलेंगे मरने के बाद, सुख दुख या मिश्रित, और जो त्यागी है वो इनसे बच जाएगा, एक तो यह पढ़ा। फिर आए ज्ञान के विभाग में, ज्ञान के विभाग में क्या हमने पढ़ा, कोई भी कार्य करना है तो उसके लिए पांच कारण है, और पांच कारणों में मुख्य कारण परमात्मा है, क्योंकि वो अनुमंता है, प्रेरता है, कर्मों का फल वही देता है, प्रेरणा वही देता है। और फिर हमने पढ़ा के कर्म किससे होता है, कर्म किससे होता है, शरीर से, मन से, वाणी से, चाहे किसी से भी कर्म हो उसके ये पांचों कारण हैं। और फिर क्या पढ़ा, जो अपने आप को केवल कर्ता मानता है और इन पांचों को नहीं मानता है वो मूर्ख है, वो अज्ञानी है। और फिर हमने क्या पढ़ा इससे पहले, बीच में एक और श्लोक पढ़ा है, कर्ता और भोक्ता से जो मुक्त है वो कोई भी कार्य करे बंधन नहीं पड़ता है, जैसे सेनापति के आदेश से मारने वाले को कोई कानून का उसके ऊपर केस नहीं होता। और फिर है सिद्धांत श्लोक, किसी भी कार्य के प्रेरक भी तीन हैं और संगठित भी तीन हैं। प्रेरक कौन से तीन हैं, ज्ञान, ज्ञेय, परिज्ञाता, ये है प्रेरक। और तीन संगठित कौन है, कर्म, करण और कर्ता, कर्म, करण और कर्ता, करण का क्या अर्थ है?
इंद्रियां।
ठीक है, तो ये हमने आज पढ़ा, कल 18 से आगे। उदाहरण हमने एक ही एनालॉजी थी आज यहाँ सेनापति वाली, और कोई इससे पहले? वो तो कुछ भी, वो तो ऐसा मैं शब्द का अर्थ समझा रहा था। ठीक है, हरे कृष्णा।
चार विधि जो